हमें न चिंता उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाभ का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो अपने अपने घरन की और सबका ऊको पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, सुकृपा सिंधु रघुवीर।
हाँ दोस्तों, देखते हैं राठौर कैसेट में सदा ब्रज सारंगा के बारे में, जो आपने भाग तीन में देखा कि सदा ब्रज जब सारंगा से मिलता है और तब तक सारंगा का पति भी आ जाता है, थोड़ी देर के लिए जब खुशियां पास में आई और पति को देख करके दुख का पहाड़ जैसा टूट पड़ा। अब तो सदा ब्रज में और जो सारंगा का पति था, उन दोनों में ही लड़ाई होने लगी, क्योंकि सदा ब्रज ये कहता है जे हमारी पत्नी, और जो सारंगा को पति रहे अब वो तो मतलब सांची का तो जे हमारी पत्नी। जब फैसला काऊ प्रकार से ना हो पाओ, फिर एक बात कही, चलो राजा के पास में चल रहे, और जब हम राजा के पास में चलेंगे तो वे उनसे हम फैसला करवाएं। अब सारंगा को अपने संग में लेके सदा ब्रज और जो पति जो रहे सारंगा को, राजा के पास में पहुंचे।
बहुत देर हो गई मुसाफिरों, इस लड़की के संग में तुम दोनों व्यक्ति खड़े हो, न कुछ कह रहे, क्या उलझन है जो हमारे दरबार में आज आपको आना पड़ा बेटा?
महाराज देखो ना, ये आपके सामने जो खड़ी है ये हमारी पत्नी है, और ये पता नहीं कौन है तो ये कह रहा है ये तो मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी को जबरदस्ती लेना चाह रहा है। आप ही न्याय करिए, मैं आपके पास में न्याय करवाने के लिए आया हूं। मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता हूं, करिए ना।
हां, तुम्हारी बात सुनने के बाद, हां मुसाफिर तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जब ये इनकी पत्नी है तो तुम इनसे क्यों झगड़ रहे हो?
महाराज ये पत्नी इनकी नहीं, ये पत्नी मेरी है, और ये जबरदस्ती मुझसे छीन रहे हैं। ये पत्नी मेरी है इनकी नहीं, ये मुझे दिलवाएं, मैं न्याय की गुहार लगाकर आपके पास आया हूं।
नहीं महाराज नहीं, ये बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। ये पत्नी तो मेरी है, मेरे साथ में शादी हुई।
नहीं महाराज, आप हमारी बात पे यकीन कीजिए, ये पत्नी मेरी है, ये गलत बोल रहा है, ये पत्नी मेरी है, मेरे साथ भिजवाओ।
नहीं नहीं महाराज, आप इसकी बात पर बिल्कुल गौर न करें, बिल्कुल गौर न करें, क्योंकि ये पत्नी मेरी है और ये जबरदस्ती। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं महाराज, आप तो कुछ सोचते क्यों नहीं?
शांत शांत शांत, एक पत्नी के प्रति दोनों अपना अपना प्रस्ताव पास रखते हो कि हमारी पत्नी है, वो कह रहा है हमारी पत्नी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये पत्नी एक है लेकिन दो आदमी की कैसे हो सकती है। बीच में अब नहीं बोलोगे, सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों दावेदार हैं और ये दोनों अपनी पत्नी बता रहे हैं, तो क्यों ना हमें इस लड़की से बात करना चाहिए। हाँ मुसाफिरों, तुम शांत रहो, बेटी तुम बताओ इनमें से कौन सत्य बोल रहा है और कौन असत्य बोल रहा है। तुम वास्तविक किसकी पत्नी हो, तुम किसके संग जाना चाहती हो?
हे प्रभु, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है कि दोनों में से किसकी कहूं और किसके साथ जाऊं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। यदि किसी एक में की बात मैं कहती हूं तो एक की बुरी होती हूं। हे प्रभु, हे परमेश्वर, अब आप ही मुझे सलाह दीजिए, मैं किसकी कहूँ, किसके साथ जाऊँ, बताइए प्रभु।
अरे पति को छोड़े सवा जगह से, अरे परमेश्वर कोई प्रेमी छोड़ो ना जाई जी।
हे परमेश्वर, कहूं किसके साथ जाऊं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है।
पति को छोड़े सवा जगह से, अरे परमेश्वर कोई प्रेमी छोड़ो ना जाए जी।
बेटी, मैंने तुमसे प्रश्न किया कि तुम किनके संग जाना चाहती हो, तुम्हारा कोई उत्तर नहीं आया।
पिताश्री के लिए नमस्कार।
युवराज, तुम सभा में अकस्मात कैसे आए?
पिताश्री, बहुत देर से मैं ये सुन रहा हूं, पीछे खड़ा था, इस सुंदरी को देख करके हमारी आत्मा इस पर विचलित है। पिताश्री, इन दोनों को यहां से भगा दो, इस सुंदरी को हमें दिलवा दो।
असत्य, अन्याय, अपराध, ये युवराज को पर स्त्री के प्रति ऐसा सोचना अशोभनीय है, अशोभनीय है।
नहीं पिताश्री, नौकरों, हमारे पिता बुढ़ापे के ग्रस्त हो चुके हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, इन दोनों को उठा करो, डलवा दीजिए अंदर बंदी गृह में।
हाँ दोस्तों, अब ऐसा होता है कि वो तो वहां पर न्याय करवाने के लिए गए थे, लेकिन तब तक राजा का लड़का आ जाता है और जैसे ही सारंगा को देखो, अरे वे देखते ही रह गए। अपने पिता से बोले,
जब राजा के राजकुमार ने के नारी दादा निहारी,
जैसे ही उनने देखी तो बड़ी सुंदर है, और जी जाके संग में कहां है ना के पीछे भाग के रही है। राजा के राजकुमार ने जब नहीं माना है और दोनों को कैद करवाने के बाद में सारंगा को अपने महलों के अंदर ले जाता है।
तो एक न मानी अपने बाप की रे मेरे मैया,
लेकिन आज तो मेरे पति भी इनके साथ हैं, तो क्या करूं? लेकिन ये तो सभी जानते हैं पति भी परमेश्वर होता है, लेकिन यहां मेरा प्रेमी है। आज मैं प्रेमी से भी बिछुड़ रही हूं और इनके साथ में मेरा पति भी है।
पति प्रेमी दो छोटी
पूर्व जन्म में मैंने कौन से पाप किए हैं जो मुझे इस जन्म में देखने को मिल रहे हैं? क्या करूं? और ये दुख अब मुझसे और देखा नहीं जाता है क्या?
कौन पाप
परेशानी क्या बात है बहन, बताओ ना।
अब हम तुम्हें क्या बताएं? हर एक बात किसी से कही भी नहीं जाती है और फिर मैं कहूं तो किससे कहूं?
अरे बहन, मुझे अपनी छोटी बहन समझ के बता देना, मुझे बता देना बहन, बताना।
ये तुम हमसे ज्यादा ही कुछ पूछ रही हो तो सुनो बहन।
हाँ,
हमारा प्रेमी और पति कारागृह में बंद है, वो तुम्हारा भाई है।
अच्छा,
लेकिन सुनो बहन। मेरा प्रेमी मेरे बगैर नहीं जी सकता है, वो मर जाएगा।
अच्छा,
लेकिन सुनो बहन, प्रेमी के वजह से तो मेरा घर परिवार सारा बिछड़ गया है, और आज जब मुझे प्रेमी मिला तो हमारे पति भी आ गए हैं। अब आप ही बताएं मैं क्या कर सकती हूं, कैसे प्रेमी से मिलूं, वो नहीं जी सकता है मेरे बगैर, नहीं।
इतनी सुंदर औरत अपने पति को छोड़े है, वो प्रेमी विशेष ही सुंदर हो, क्यों ना उसे देख लिया जाए। बहन, बहन।
हाँ बोलो बहन।
सुनो मेरी बात सुनो। अपना प्रेमी मुझे दिखा दो।
अपने प्रेमी?
हाँ,
क्यों ना चलूं बहन, चलो
चलो।
यदि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा बहन, यही चाहती हूँ मैं।
तो चलो ना बहन, चलो हम तुम दोनों चलते हैं।
हाँ दोस्तों, वो राजा की लड़की सारंगा को लेके चली और जहां पर पति और प्रेमी कैद थे, धीरे 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 उन्हीं के पास में पहुंची। हुआ ऐसा
अरे हाथ पकड़ी दोनों चली दाई अरे मेरे भाई।
सदाव्रत और सारंगा का पति जो कैद था उसी के पास में जैसे ही पहुंची, लेकिन
सदाव्रत को
देखा, देखती ही रह गई और दिल में सोचने लगी,
हे भगवान, इतना सुंदर इसका प्रेमी है, इसीलिए ये अपना पति अपना परिवार छोड़ के इसके साथ में रह रही थी। मगर कैसा हो अगर ये प्रेमी मुझे मिल जाए, बहुत ही अच्छा होगा।
कुमारी ने देखो,
अरे नैना रसीले तो देखी कि अरे मेरे भैया जापे मिठी बैठी वो नारी जी,
अरे नैना रसीले तो देखी कि अरे मेरे भैया जापे मिठी बैठी वो नारी जी,
अरे नहीं मन सो चना लगी अरे मेरे दादा जू वो तो मेरो भरतार जी,
मन ही मन सो चना लगी अरे मेरे दादा जू वो तो मेरो भरतार जी।
ऐसा बहन बहुत देर हो गई, अब चलो चलते हैं।
चलो चलते हैं।
बहन एक बात मानोगी मेरी?
क्या बताओ।
मेरे पिता और मेरा भाई बहुत खतरनाक है।
अच्छा।
हाँ, इसलिए मैं सलाह देती हूँ।
क्या बताओ बहन?
कि तुम यहाँ से चली जाओ तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा।
क्या कह रही हूँ, चली जाऊँ?
हाँ,
लेकिन कैसे?
कैसे
हमें ये बताओ कि तुमने मुझे तो निकाल दिया है, मेरी तो सहायता कर दी है, लेकिन वो
उन लोगों की चिंता मत करो तुम, उन्हें तो मैं बाद में निकाल दूंगी, पहले तुम चली जाओ।
नहीं बहन, अब तुमने हमें जब निकाल दिया है तो हमारी प्रेमी को भी निकाल दो तो ये ज्यादा उत्तम रहेगा। बहन
बहन तुम चिंता मत करो, तुमने मुझे छोटी बहन माना है, माना है कि नहीं माना?
हाँ बहन,
तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं निकाल दूंगी ना।
ठीक है,
जाओ। अब काम बनेगा, क्या समझ रही थी अपने आप? अब देखती हूँ, अब तो मैं अपना करके ही रहूंगी। हाय कितना बढ़िया है, कितना सलोना सलोना उसका रूप है, अब मैं उससे शादी करूंगी और अपनी जिंदगी बिताऊंगी।
हाँ दोस्तों, सारंगा को तो वहां से निकाल दिया है और सारंगा भी नहीं जानती थी ये हमसे झूठ बोल रही है। वहां से जब आगे चली, रोती हुई जा रही है,
अरे भूखी प्यासी पागल सी वो घूम रही दुखिया,
से आ रही है? इस झाड़ी में देखूं जाके। शांत बालिका, शांत शांत बेटी, शांत। क्या बात है बेटी?
प्रभु मैं तुम्हें क्या बताऊं?
बेटी रोना या क्रोध करना या अपने आप में पछतावा करना यह किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बालिका पहले पूर्ण रूप से आप शांत हो, उसके बाद में हमारा उत्तर दीजिए। कौन सी परिस्थिति है, किस समस्या ने तुम्हें सताया है जो इस वियावान जंगल में एकांत बैठ करके रो रही हो?
प्रभु पिछली याद मुझे मत दिलाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब पिछली बातों को ध्यान करती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है।
सांत बेटा सांत, हमने बड़ा मूर्ता का परिचय दिया जो कि आपसे पुरानी बात के बारे में कहा। बेटा कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए। खड़े हो, खड़े हो, बहुत अच्छे बेटा। बेटी हम पुराणों का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चलो हमारे साथ चलो। और हमें पुराण ये मार्गदर्शन करते कराते हैं कि आपत्तकाले मानव को धैर्य का परिचय देना चाहिए। स्त्री पुरुष समाज का एक उत्थान का स्वरूप है। देख रही हो ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये हमारा आश्रम है।
आपका आश्रम?
हाँ बेटी, मैं भिक्षा भोजन के लिए जा रहा था। संतों का कार्य ये होता है दूसरों की रक्षा करना, उपदेश करना और भिक्षा करना। आप इस आश्रम पर अपने परमात्मा का स्थान समझकर, परमात्मा किसी एक का नहीं, आश्रम किसी एक का नहीं, ये आपका आश्रम है।
प्रभु ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप मुझे यहाँ प्राप्त हुए हैं।
बेटा इसमें सौभाग्य की बात नहीं, हम कोई परोपकार नहीं करते, ये परमात्मा की कृपा है जो हम आपको यहाँ मिले। यहीं आप आराम से रुको।
जी स्वामी।
अब उस लड़की को तो मैंने भगा दिया, अब उसको देखती हूँ जाके कि वो क्या कर रहे हैं। चलो चलती हूँ कि बंदी गृह में क्या कर रहे हैं वो। ए इधर आओ, तुम नहीं, तुम।
जी आपने हमें बुलाया?
हाँ मैंने तुम्हें बुलाया। मैं तुम्हें इस जेल से आजाद करती हूँ, चलो मेरे साथ बाहर चलो।
ये तो आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा परोपकार किया है जो आपने हमें इस कारागार से आजाद कर दिया।
आजाद कर दिया? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप?
आपने जो आजाद किया है ना, मैं वही तो कह रहा हूं। और ये आपका एहसान में सारी जिंदगी भर नहीं भूल सकता।
ये तो मेरा धर्म है, ऐसी बातें मत करो। आप क्या कहना चाह रहे हैं?
आपने हमें तो आजाद कर दिया।
हाँ
लेकिन तुम्हारे महलों में
अच्छा
हमारी रानी भी है, हमारी पत्नी भी है, इसके बिना मैं एक पल भी जी नहीं सकता। इसकी सूरत हमारे दिल में हमेशा बसी रहती है। ऐसा करो ना, एक एहसान हमारे ऊपर और कर दो। आप हमारी पत्नी को भी आजाद कर दो, हमारे साथ में उसे भेज दो।
वो आपकी पत्नी है?
जी।
आप कह रहे हैं कि वो तुम्हारी पत्नी है, मगर वो तो कब का तुम्हें छोड़ के भाग गई।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। वो हमारे साथ में मर सकती है और जीने मरने की कसमें खाई और वो हमें छोड़ के नहीं जा सकती।
ये आप का क्या कह रहे हैं
राजकुमारी? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं।
उसे जाने दो। देखो एक बात सुनो।
बोलिए।
देखो मेरे पास, मेरे पिताजी के पास इतना धन, इतनी दौलत है, इतना राजपाट है कि हम दोनों जिंदगी भर तक ऐसा आराम कर सकते हैं, इसीलिए मेरे से शादी कर लो।
नहीं नहीं नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो?
मैं सही कह रही हूँ ना?
बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम एक राजकुमारी हो।
मैं भी तो राजकुमारी हूँ
भाई। तो मैं कह रहा हूँ तुम राजकुमारी हो, और ना ही हमें राजा बनने की कोई लालसा है, ना ही तुम्हारे धन दौलत से कोई मतलब है, कोई प्यार है।
तो तुम ऐसे नहीं मानोगे?
आप क्यों नहीं समझ रही हैं? आप तो इतने अच्छे विचारों की हैं। अगर अच्छे विचारों की नहीं होती तो तुम हमें उस कारागार से नहीं निकालती।
देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम मेरे दिल की क्यों नहीं सुनते हो?
नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो ना, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। मैं अपनी पत्नी को प्यार करता हूँ। वो हमारे बिना नहीं जी सकती है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, तो मुझे जाने दो।
तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? चलो ऊपर चलो।
नहीं 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 राजकुमारी, मेरी बात को सुनिए।
अरे चलो अटरिया पे चलते हैं।
मेरी बात सुनिए ना।
मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं राजा की बेटी हूँ, अभी सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें फांसी भी लगवा सकती हूँ, और जो मैं कहती जाऊँ वो करते जाओ और चलो मेरे साथ।
अगर फांसी की बात है राजकुमारी, तो मौत से कौन नहीं डरता है। चलो अब जो होगा सो देखा जाएगा। हम तुम्हारे साथ में चल रहे हैं। हाँ दोस्तों, वो राजकुमारी जो थी सदाब्रज को वहां से महलों में लेके गई। रात का समय था, थोड़ी देर बैठ करके वो लड़की सदाव्रत से प्यार की बातों करती रही। और बात नहीं बात न में, बात नहीं बात न में, वे तो सोई गई। और जैसे ही वे सोई, अब सदाव्रजो का नींद है, और बाने देखी कि लड़की तो सोई गई। और किसी कारण, मतलब किसी भी तरह से, वो सदाव्रत जो था उन महलों से निकल के रात के समय भागा। भागता हुआ जा रहा था, हृदय में एक बात आई, अगर हम इसी अपने भेष में ही भागते चले गए तो कहीं ऐसा ना हो कि वो राजकुमारी हमारे पीछे पड़ जाए और हमें पकड़ ले, क्योंकि वो हमारे प्यार में इतनी अंधी है, इतनी पागल है। तो महात्मा का भेष धारण कर लिया और सदाव्रत जो था वो महात्मा बन गया। अब सदाव्रत वहां से महात्मा बन के चला। धीरे धीरे सवेरा हो जाता है, और जब सवेरा हुआ तो उधर सारंगा सोचने लगी, अब क्या करें क्या नहीं करें। राजा की लड़की ने हमें तो छोड़ दिया, और ऐसा ना हो कि वो हमारे प्रेमी और पति दोनों को मरवा दे। चलो हम चल के देखते हैं महलों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे भी भेष बदलना पड़ेगा। तो सारंगा जो थी, ये महतरानी जब बनी है, चली है वहां से।
अरे महतरानी झाड़ू लो तो उठाई दी।
राजकुमारी ने हमारे प्रेमी को मरवा तो नहीं दिया। और जब लौट के वहां से फिर महात्मा की कुटिया पर चली तो रास्ते में ही सदाव्रत मिल गया, वो भी महात्मा के भेष में था। और जब महात्मा के भेष में था वो महतरानी के भेष में थी, एक दूसरे ने पहचाना नहीं। और जब ज्यादा दुखी देखा है सदाव्रत ने तो सारंगा से एक बात कही है, तुम कौन हो तो तुम बड़ी दुखी हो। लड़की कहने लगी, हम तुम्हें क्या बताएं।
रोई रोई मिनिया कह रे सन्यासी, ओए सन्यासी मेरे, अपनों कहा सुनावे तुम्हें हाल दी।
दुख में ही, लेकिन हमने कभी सुख नहीं देखा। और जैसे ही इतने शब्द सदाव्रज ने सुने तो महात्मा के भेष में था, कहने लगा, तुम जो कह रही हो ये सच है? बोले, बिल्कुल सच है। तो सदाव्रज कहने लगा, बेटी
जो कछु हाल तू मान होए मेरी बिटिया, होए मेरी बिटिया प्यार, समझो भाई हाँ मार दी।
अरे तू कछु हाल तू मार होए मेरी बिटिया, होए मेरी बिटिया प्यारी, कोई समझो हाल हाँ मार दी।
हाँ दोस्तों, सदाव्रज सारंगा जब मिले, लेकिन वो महात्मा के भेष में थे और सारंगा जो थी वो अपने चेहरा पर पर्दा डाले थी, इसलिए हमें कोई पहचाने ना। एक दूसरे की बातें तो हो गई लेकिन पहचाना नहीं। सदाव्रज वहां से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, अपने असली वेश में आता है। वो बगीचे की एक मालिन के पास में रुकता है और सारंगा उधर उस महात्मा के आश्रम पर पहुंचती है और बैठ करके सोचने लगी। वही बात हृदय में है, रो रही है, सोच रही है,
हे प्रभु, मैंने अपने प्रेमी के पीछे क्या न क्या कर बैठी, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हुई, ऐसा क्यों क्या है? अब मैं कैसे मिलूं प्रेमी से, कहां जाऊं, किस जगह जाऊं, किस जगह प्राप्त करूं? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं उस राजकुमारी ने मेरे प्रेमी को मरवा न दिया हो। कहां जाऊं, मैं रानी से भंगिन भी बनी लेकिन फिर भी सफल नहीं हुई, क्या?
रानी से भंगिन बनी अरे मेरे प्यारे,
we'll be right back.
लेकिन फिर भी नहीं मिल पाई।
तुझ बात निभान को अरे मेरे प्यारे, तुझ बात ये निभान को अरे मेरे प्यारे, मैंने सुख नहीं पायो बरातार जी।
प्रभु पता नहीं मैंने कितने पाप किए हैं, क्या कर्म किए हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सदा व्रज से कभी नहीं मिल पाऊंगी। और ऐसे बैठे बैठे अब ये नहीं होगा, यदि मुझे अपने प्रेमी से मिलना है तो कुछ करना चाहिए। और यदि मेरा पति वहां से छूट गया तो भी मैं अपने प्रेमी से नहीं मिल पाऊंगी, कभी नहीं मिल पाऊंगी।
हुआ ऐसा, सारंगा जो थी वो तो वहां से चली है सदा व्रज की खोद में, और जब आगे को बढ़ी है आंखों में आंसुओं की धारा बह रही है, सोचती हुई रोती हुई जा रही है। लेकिन दोस्तों
तो ढूंढना बिटिया चली दाई अरे मेरे दादा, कोई रोबती जाई सुको बढ़ती हुई गई। हुआ ऐसा, धीरे 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 जैसे ही आगे बढ़ी है तो उसी बगीचे में पहुंची है जहां पर सदा व्रज रुका हुआ था। और इतने सारंगा चली और उधर वो राजा की लड़की जो रहे, जिसने सदा व्रज को कैद से निकाला था, और वो भी उससे प्रेम करने लगी थी क्योंकि सदा व्रज की सुंदरता पर मोहित हो गई। वो भी महलों से निकल के चली ढूंढने के लिए। हुआ ऐसा, अरे बगिया की मालिनी मिली अरे मेरे दादा,
सारंगा जैसी उस बगीचे में पहुंची तो वो मालिनी मिली गई, कौन सी, जहां पर सदा व्रज रुका हुआ था।
बगिया की मालिनी मिली अरे मेरे भैया, बसे कई थी आंसू डारी जी।
अरे बगिया की मालिनी मिली अरे मेरे भैया, बसे कई थी आंसू डारी जी।
बगीचे की जब मालिन मिली है तो सारंगा ने हाथ जोड़ के एक बात कही, बहन क्या तुम्हारे बगीचे में कोई राजकुमार तो नहीं आया था, कोई लड़का तो नहीं आया था। और जैसे ही मालिन ने सुना तो सदा व्रज के बारे में उसे ध्यान आ गया, जवाब दिया, बेटी एक लड़का हमारे बगीचे में रुका है, देखने में बड़ा सुंदर है, कहीं वो तो नहीं है। सौरंगा ने सोचा हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि सदा व्रज ही है। मालिन कहने लगी तुम परेशान बहुत मालूम पड़ती हो, क्या बात है, सारंगा बोली मैया
सब जीवन रो पतुगा यारे मेरी मैया सब जीवन रो पतुगा यारे मेरी मैया तो पूरी भाई ना गंगा
दोस्तों बाघ की मालिन जो थी वो सारंगा को लेके वहां से चली है। कहा बेटी चिंता ना करो और वो लड़का हमारे पास में है, इसी बगीचे में ठहरा हुआ है, चलो मेरे साथ। तुम यहीं पर रुको और हम उसे अभी लेके आ रही है। मालिन जो थी वहां से आगे बढ़ी और सदाव्रज को बताया है कि एक लड़की तुम्हें खोज रही है और वो बगीचे में बैठी है, चलो हमारे साथ। सदाव्रज भी वहां से चला और जैसे ही सदाव्रज सौरंगा मिले हैं एक दूसरे की तरफ देखा तो पहले तो देखते ही रह गए, बाद में सौरंगा पर नहीं रुका गया, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, सदाव्रज की जेट भर के रोने लगी। नहीं सारंगा तुम रो ना, मैंने कहा नहीं।
लेकिन सदाव्रज रो ना, फिर क्या करूं?
नहीं नहीं रो ना,
मैंने तुम्हें कहीं और कहा नहीं ढूंढा है।
हमने और तुमने बहुत रो लिया लेकिन लेकिन लगता है आज के बाद में हमें तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा। तुम रो ना, मानो मेरी बात, रो ना।
यदि रोएंगे नहीं तो फिर और क्या करें? आखिर हमारी तुम्हारी परीक्षा और अब कहां तक होगी, समझ में नहीं आता है।
सारंगा हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है भगवान ने जो दुख दिए थे वो आज से बिल्कुल ही खत्म कर दिए। देखो ना उस राजा के लड़के ने हमें जो कैद करवाया और उस लड़की ने हमें छोड़ दिया, उसने हमारे ऊपर उपकार किया और ये भी एक परमपिता परमात्मा की ही देन थी। फिर भी हमें यही नहीं मालूम था कि तुम हमें अब कभी दोबारा भी मिलोगी, लेकिन एक आस पर हम टिके रहे, हम तुम्हें ढूंढते रहे, तुम हमें ढूंढती रही। आखिरकार ईश्वर ने हम दोनों को मिला ही दिया, इसलिए मैंने कहा नहीं तुम रो ना, क्योंकि हम दोनों ने बहुत रो लिया।
लेकिन सदाव्रज मैंने तुम्हारी वजह से गांव परिवार सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन अब कुछ नहीं देखना चाहती हूं।
वो तो मुझे भी मालूम है, तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता को छोड़ा, तुमने मेरे पीछे धन दौलत को छोड़ दिया, तुमने मेरे पीछे अपने पति को भी छोड़ दिया, लेकिन आज के बाद हम दोनों साथ साथ ही रहेंगे, दोनों साथ साथ ही रहेंगे।
हाँ यही मैं भी चाहती हूं।
हुआ ऐसा जहां पर बगीचे में रुके हुए थे तो मालिन ने देखा ये दोनों उदास हैं और बड़ा रो रहे हैं। उनका दुख देख करके एक बात कही, बेटा ऐसा करो तुम इसी बगीचे में आज रुको और सुबेरा जब हो तब तुम जाना। अब जो बे पुरानी बात है, बड़े खुश हैं दोनों के आज तो हमारी आस पूरी हुई दे, बड़े खुश हैं।
तो फूलन की सेज लगाई सुनो चितलाई सभी सरदारी और सदा बिरज के पास में बैठी सौरंगा प्यारी। जैसे ही सेज लगाई है सदा बिरज सौरंगा बैठे हैं, बड़े खुश हैं, बातें कर रहे हैं सौरंगा।
हाँ
अरे अब नहीं, अब क्यों रो रही हो?
नहीं मैं रो नहीं रही हूँ।
अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना।
मैं क्यों रोऊंगी मैं?
हाँ क्योंकि अब हमारे तुम्हारे कष्ट बिल्कुल ही कट गए। लेकिन तुम्हें कुछ याद है? याद है ना?
हाँ सदाव्रत,
तुमने हमसे कहा था हार
के ऐसा न में संग काटेंगे घर,
याद है ना?
हाँ याद है।
ऐसा कि सदा बिरज और सौरंगा बैठे हुए थे और दोनों ने यह सोचा कि आज तो हमारी आस पूरी हो ही जाएगी और तब तक दूसरा पहाड़ टूट पड़ा। पहले गम था वो खुशियां आई और खुशियों के बाद में कैसा दुख का पहाड़ टूटा। वो राजकुमारी जो थी ढूंढती हुई वो भी उसी जगह पर पहुंच गई।
अच्छा मैंने तुम्हें आजाद करवाया और तुम यहाँ बैठे उसके साथ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, चलो मेरे साथ।
क्या कहा, प्यार करती हूँ? अरे तुम होती कौन हो हमारे दोनों के बीच में बोलने वाली?
होती कौन हो?
अरे चली जाओ यहाँ से, जाओ चली जाओ।
नहीं जाती, पूरा हक है मेरा, नहीं जाती। हाँ देखना चाहती है मेरी ताकत को? ले हाँ ले देख मेरी ताकत।
अरे ये क्या किया तुमने? तुमने मानुष से तोता बना दिया है, ये क्या कर रही है? नहीं
ऐसा हुआ, जादूगरनी नार जो थी वो राजकुमारी तो वो वहां पर पहुंची, पहले तो बहुत क्रोध जताया, उसके बाद में उसने जादू चला दिया, सदा बिरज को तोता बना लिया। और जब तोता बना लिया सारंगा उस लड़की से रो के कहने लगी, बहन
अरे बहन तुमने ये क्या किया है, तुमने इन्हें तोता बना दिया है।
तू मेरी ताकत को देखना चाहती थी, अब ले ना मेरा रहा ना तेरा रहा, जा रही हूं लेके।
सारंगा रोती रही गिड़गिड़ाती रही लेकिन उस राजकुमारी ने सदाव्रज को नहीं छोड़ा और वो वहां से आगे को भागती हुई चली अपने घर की तरफ। इस राजकुमारी के सामने रो रही है, जवाब दिया बहन। बहन मेरे पति को छोड़ दो, मेरे प्रेमी को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं मान रही है। कह रही है बहन,
कछु देर लो तू चली जा मेरी गुइया, ओए मेरी बहना प्यारी, तेरी जैसो तो ईसु आई जी।
अरे कछु देर लो तू चली जा मेरी गुइया, ओए मेरी बहना प्यारी, तेरी जैसो तो ईसु आई जी।
बहुत विनती करती रही लेकिन वो नहीं मानी, नहीं मानी, और कह रही है तुझे नहीं मालूम।
अरे हमने निकालो जाई जेल से, सुन प्यारी, ओए सुन प्यारी मेरी, मैं बनूंगी जाकी नारी जी।
लेकिन वो लड़की वहां से लेके चली गई सदाव्रज को तोता बनाए कि कैद करके, और सारंगा बाई जगह पर रोते रही। अब देखते हैं यहां से आगे भाग पांच में राठौर कैसेट में कि अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, सारंगा अपनी बात को निभा पाएगी या नहीं निभा पाएगी। सदाव्रज उस तोता से मानव बनेगा या नहीं बनेगा, तो देखते हैं भाग पांच में।